नमस्कार साथियों, छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से दिनकर पातुकर आज हमारे साथ छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी पर बालिका शिक्षा और बालिकाओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में नासिक से छिंदवाड़ा तक की 870 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पूरी करने वाले ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र उपासनी सर, जो कि छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी पर आज हमारे साथ एक खास मुलाकात में जुड़े हैं। ज्ञात हो कि उपासनी सर वर्तमान में स्वच्छता एवं जल पर जनमंगल संस्थान के साथ मिलकर एक टीम वर्क के रूप में कार्यरत है। नमस्कार सर जी।
नमस्कार
सर जी, जैसा कि हम आज आपसे एक विशेष अवसर पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी वर्तमान नवरात्रि का समय भी है
और जी जी।
इस नवरात्रि पर पूरे संपूर्ण देश में नवकन्याओं को पूजा भी जाता है और नवकन्या के रूप में यदि हम देखें तो छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी पर एक विशेष अभियान चला गया बालिका शिक्षा पर। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि वर्तमान समय में बालिका शिक्षा पर आपकी क्या राय है
जी। सबसे पहले तो मोबाइल वाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार दिनकर जी, और नवरात्रि के उपलक्ष्य में जितनी भी मातृशक्तियां हैं, जितनी भी बेटियां हैं, माता रानी के जितने भी रूप हैं, उन सारे रूपों को मैं उनके चरणों पे अपना प्रणाम करता हूँ। बेटियों की जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम एक संवेदनशील विषय की तरफ जा रहे होते हैं। आज हम बेटियों की शिक्षा पर इतनी सुविधाएं जुटा पा रहे हैं और इसे आधुनिकतम बनाने हेतु प्रयासरत है। इन सब प्रयासों की शुरुआत हमारे इतिहास में भी हमको देखने को मिलती है। 17वीं सदी में 19 श्लोक अहिल्याबाई ने स्वयं शिक्षा के महत्व को जाना और स्वयं शिक्षित होकर पूरा होलकर राज्य संभाला। थोड़ा आगे हम चलते हैं तो पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर और इसी कालावधि में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के प्रयास तेज होते हुए हमें दिखते हैं। आज बालक बालिका में अंतर नहीं समझा जाता है, इसीलिए बालिकाएं कंधे से कंधा मिलाकर शिक्षित होने के साथ ही प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ेंगी। वर्तमान में जब हम बात करते हैं तो एक परिदृश्य हमको बहुत याद रखने की बात आती है कि पिछले 2 वर्षों से हम और पूरा विश्व जो कोरोना महामारी से जूझ रहा है, जब हम बात करते हैं कि आज की शिक्षा की, तो अब शिक्षा का स्वरूप थोड़ा बदलता हुआ हम देख रहे हैं। जैसे कोरोना काल की भी हम बात करें तो एक और कुछ हद तक नियमित पढ़ाई का नुकसान हुआ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बच्चे टेक्नो फ्रेंडली हो रहे हैं, यानी पढ़ाई की नई तकनीकों को जानने भी लगे हैं। नए तकनीकों के माध्यम से पढ़ाई करना, जैसे हम देखते हैं कि आजकल वेबिनार है और मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई की जाती है, जिसको हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कहते हैं। इन सब कारणों से भी हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा का स्तर तो निश्चित रूप से ऊंचा उठ रहा है। अब जब हम बालिका शिक्षा की विशेष रूप से बात करते हैं तो मुझे ये लगता है कि लगातार जो प्रयास हो रहे हैं, जिसमें अनेकानेक सुविधाएं जो बालिकाओं को शिक्षा के लिए दी जा रही, इतनी सारी शालाएं खुली हैं, कई ऐसे उपक्रम हैं जिनमें बालिकाएं अब शामिल भी होने लगी है। जैसे हम तकनीकी पार्ट की बात करें, ITI करना या पॉलिटेक्निक करना, इस माध्यम से जो बेटियों का सशक्तिकरण हो रहा है वो निश्चित रूप से एक बड़ा गौरवपूर्ण विषय है। और मुझे लगता है कि आज बालिका शिक्षा आवश्यक तो हमेशा ही रही है और बालिका शिक्षा को लेकर निश्चित रूप से हमारा समाज संवेदनशील होता जा रहा है। जो बालिकाएं पढ़ लिख कर आगे गई हैं, उन्होंने निश्चित रूप से एक अच्छा परचम भी लहराया है जी।
सर जी, जैसा कि आपने विगत वर्षों में एक लंबी साइकिल यात्रा निकाली और उस साइकिल यात्रा के दौरान आप छिंदवाड़ा जिले के कौशल विकास खंड के रामाकोना भी पहुंचे और आपकी यह यात्रा कुल 870 किलोमीटर की रही है नासिक से छिंदवाड़ा तक। तो आप जो ये यात्रा बालिका शिक्षा और बालिकाओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में जब निकाली, तो इस यात्रा के दौरान आपको क्या अनुभव प्राप्त हुए?
जब मैंने पहली बात तो ये थी कि मेरे अंदर एक जो आग थी या एक जो दर्द था, क्योंकि लगातार उस समय बालिकाओं पर अत्याचार अभी भी हो रहे हैं, अभी भी बंद नहीं हुए हैं, लेकिन एकदम बिल्कुल छोटी बेटियां 3 महीने की 4 महीने की बेटियों पर जब अत्याचार हो रहा था, और निश्चित रूप से अत्याचार करने वाले हमारे समाज के ही कुछ ऐसे कुरूप चेहरे होते हैं जो समाज को मलिन करते हैं, समाज को गंदा करते हैं, तो ये जब देखा तो पहले तो मेरे मन में आया कि समाज में से बात की जाए, समाज के बीच जाके बात की जाए। फिर सोचा कि समाज के बीच जाना है तो आपकी भी एक तपस्या होनी चाहिए, क्योंकि आपकी तपस्या देख के ही लोग आपसे बात करते हैं, इसलिए साइकिल यात्रा का रास्ता चुना। दूसरा कारण ये था कि साइकिल के माध्यम से जाते हैं तो छोटे छोटे गाँव में लोगों से बात करने का मेरे पास एक अवसर था। तो जब मैं समुदाय के बीच पहुंचा तो, और जब एक सवाल मैंने उठाया कि आज इतनी स्थितियां जब हो रही है तो हम किस स्तर पर जा रहे हैं, क्या कारण है इन सारी स्थितियों का, तो चर्चा में दिनकर जी यही निकल के आया कि हमारे परिवार जो है एक तो सिमटते जा रहे हैं पहली बात, दूसरा इसको मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा हूँ, दूसरा ये कि हमारे परिवार से बुजुर्ग लोग कम होते जा रहे हैं और कई परिवार ऐसे जो पति पत्नी और बच्चे इसमें ही रहते हैं, माता पिता कहीं और रहते हैं, जिसके कारण ये हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं बच्चों तक नैतिकता पहुंचाने में असफल हो रहे हैं, या बच्चों तक जो नैतिकता पहुंचाने का जो बड़ा अच्छा माध्यम हुआ करता था हमारे बुजुर्ग, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं लुप्तप्राय होता जा रहा है और उसमें एक बड़ा गैप आ रहा है, पहला। दूसरा, जब मैंने समुदाय से बात की तो ये भी बात ध्यान में आई मुझे कि हमारा एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम होता है, या सोशल सीसीटीवी हम उसको आजकल की भाषा में कहते हैं। सोशल सीसीटीवी मतलब कैसा कि यदि मोहल्ले में कुछ बच्चे कोई शरारत कर रहे हैं या कोई गलत हरकत कर रहे हैं तो पड़ोस में रहने वाले लोग उनको रोकते टोकते हैं, ये परंपरा आपने हमेशा देखी होगी। लेकिन अब क्या होता जा रहा है कि जब हम बात करते हैं कि भाई आपको क्या लेना देना, आपको इससे क्या मतलब, हमारे बच्चे कर रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छा करे या बुरा करे, तो पड़ोसियों ने एक दूसरे को रोकना टोकना बंद कर दिया, जिसका दुष्परिणाम हो रहा है कि किसी की छोटी बच्ची यदि किसी के साथ जा रही है, कोई बड़ा व्यक्ति उसको बरगला के यदि ले जा रहा है कहीं, तो भी कई बार अब हमारे सामाजिक सीसीटीवी की जब हम बात करते तो लोग रोकना टोकना नहीं चाहते कि पता नहीं किसी के व्यक्तिगत मामले में हम बात करेंगे तो कोई क्या बोलेगा या क्या समझेगा या पता चला कि हमसे लड़ने लगे। तो ये जो सोशल सीसीटीवी सिस्टम की बात की, इसको हमको दोबारा स्थापित करना पड़ेगा। मेरे पूरी साइकिल यात्रा का जो जिस निकला, जो स्टार निकला, वो यही निकला कि जब तक हम सोशल सीसीटीवी सिस्टम को लागू नहीं करते, पर लोगों में आपसी समन्वय स्थापित नहीं करते, लोग मेरे बच्चे भी कहीं जा रहे हैं तो पड़ोसी को ये पूछने का अधिकार मुझे देना होगा कि अकेले यदि दिखे, रात बेरात दिखे या कहीं आपको ऐसा लगे कि शंका वाला मामला है तो उसमें आपको डाउट आता है तो आप पूछे उनको, रोके टोके, आप उनको डांटते भी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। ये वातावरण जब हम पुनः स्थापित करेंगे समुदाय में तब शायद कहीं जाते हैं हम बहुत हद तक पूर्णता नहीं कहता, बहुत हद तक हम ये जो बालिकाओं पर हो रहे हैं जो दुष्कर्म है या इस तरह के जो अत्याचार है इनको हम रोकने के लिए शायद एक अच्छा कदम हमारा होगा। तो हमको सोशल सीसीटीवी सिस्टम को फिर से एक बार स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो कुल मिला के मेरी साइकिल यात्रा में मुझे अनुभव ये आया कि हम लोग अलग अलग होते जा रहे हैं, हमको एक कॉलोनी, एक सोसाइटी या एक मोहल्ला में जो आपस में भी सौहार्द मिलता है, एक समानता का भाव है, एक भाईचारा है, इसको हमको फिर से कहीं ना कहीं विकसित करना होगा, तभी जाके हम इन सब चीजों से निकल पाएंगे।
सर जी, जैसा कि बेटी के शिक्षा पर, बालिका की शिक्षा पर शासन का भी ध्यान है और बेटियों की पूरी पढ़ाई इसी में है, सबकी भलाई इसी तर्ज पर आपके द्वारा बालिका शिक्षा के लिए एक नैतिक शिक्षा का भी उपक्रम चलाया जा रहा है, जिसके साथ साथ आप चलित वाचनालय भी चलाते हो, तो बालिका शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा को आप किस तरह से देखना चाहते?
ऐसा जी की हम कितना भी पढ़ लिख ले, हमारी बेटियां कितना भी पढ़ लिख ले, मतलब कितनी भी बड़ी डिग्री ले ले, लेकिन यदि उनके अंदर नैतिक बल नहीं है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में रह जाता है। यदि हम जैसे बात करें कि बालिकाओं को नैतिक शिक्षा की और भी बढ़ाना होगा, इसलिए क्योंकि यदि नैतिक बल नहीं है तो हम जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना नहीं कर सकते। कई बार जीवन में जिनकर भी ऐसे अवसर आते हैं जब हम निराश होते हैं, उदास होते हैं और मानसिक रूप से टूटने लगते हैं, तब नैतिक बल ही हमें इस स्थितियों से उबारता है। हमें बेटियों को जैसे अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, सावित्री गायसले, रानी दुर्गावती, कल्पना चावला, गुंजन सक्सेना, वैज्ञानिक जानकी अम्माल, असीमा चटर्जी, ऐसे कई कई नाम, सौम्या स्वामीनाथन, ऐसे ले सकता हूँ कि जिनके बारे में, जिनके कर्तृत्व के बारे में हमको बताना होगा, इसलिए बताना होगा कि इन लोगों को जब आप पढ़ेंगे, इन लोगों के बारे में जब आप जानेंगे, तब आपको ये महसूस होगा कि इन सबके जीवन में विपरीत परिस्थिति आई है और इन विपरीत परिस्थितियों पे मात इन्हीं लोगों, इन लोगों ने कभी की, जब इनके पास एक नैतिक बल था। आप अहिल्याबाई को देख लीजिए ना, कि जब बड़ी हुई तो पति का साथ छूट गया, पति का देहांत हो गया, ससुर जो थे मल्हार राव उनका देहांत हो गया, बेटी दामाद के मरने के कारण बेटी सती चली गई, बेटे के मरने के कारण बहुए सती चली गई, पारिवारिक और कई राजनीतिक चीजों का उन्होंने सामना किया। इतना करने के बाद भी उन्होंने पूरे सावरकर अपने होलकर साम्राज्य को संभाला और पूरे होलकर साम्राज्य को पुनः स्थापित करते हुए कई सारे सामाजिक कल्याण के कार्य उन्होंने किए। ये क्यों किया? क्योंकि नैतिक बल उनके पास। आज हम देखते हैं कि यदि किसी बेटी का पति मतलब दुर्घटनावश यदि वो नहीं रहता है या कालवश हो जाता है तो वो टूटने लगती है, वो अपने आप को एक सीमित दायरे में बांध देती है। वही आप देखिए दुर्गावती ने भी अपने पति के जाने के बाद भी अपने साम्राज्य को संभालने और मुगलों से लड़ने की ताकत जुटाई। लक्ष्मीबाई ने भी यही किया। ये जब हम बात करते हैं इस नैतिक शिक्षा की, तो दिनकर जी बहुत आवश्यक हो जाता है कि यदि हमारे पास नैतिक बल है तो हम छोटी छोटी बातों से निराश नहीं होंगे, क्योंकि असफलता जीवन का एक बहुत जुड़ा हुआ और महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको कहीं ना कहीं असफलताएं आनी है, फिर वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, पारिवारिक क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, इन असफलताओं से जूझना है, इन असफलताओं से लड़ना है, इनका सामना करना है। तो बिना नैतिक बल के आप नहीं कर सकते। आपको हमको ये प्रयास जरूर शुरू करना पड़ेगा कि यदि हम समाज में बैठे हैं, मोहल्ले में बैठे हैं, तो किसी न किसी एक सफल एक ऐसी महान महिला की हम कहानी हमारी बच्चियों को सुनाए, ताकि उनके सामने एक सपना संजो सके। क्योंकि पढ़ाई करके इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, शिक्षिका बनना या अन्य किसी व्यवसाय में जाना, वैज्ञानिक बनना, उद्योगपति बनना, ये अलग बात है। लेकिन आप तभी सफल हो सकते हैं जब आपके पास एक नैतिक बल हो, क्योंकि किसी भी ऊंचाई पे जाने के लिए आपको परेशानियों का सामना करना तय है। बिना परेशानी, बिना संघर्ष का सामना किए बगैर कोई भी व्यक्ति जीवन की सफलता तक नहीं पहुंच पाता या जीवन की ऊंचाइयों को नहीं छू पाता। इसलिए मुझे ऐसा लगता है दिनकर जी, और उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं, उस पर हमारा प्रयास ये चल रहा है कि अलग अलग प्रतियोगिताओं के माध्यम से लोग हमारे महापुरुषों को, हमारे यहाँ की महान स्त्रियों को, महान माताओं को जाने समझे, जिन्होंने समाज में अपना एक परचम स्थापित किया है, जिन्होंने समाज के साथ संघर्ष किया। लेकिन उस संघर्ष का परिणाम ये हुआ, यदि आप सोचिए, यदि सावित्रीबाई संघर्ष नहीं करती, समाज के एक वर्ग द्वारा उनपे टीचर भी फेंका गया, उनके द्वारा समाज में आकर बेटियों को पढ़ाने की बात का विरोध भी हुआ, इन विरोधों को वो सहन नहीं करती या इन विरोधों के सामने वो झुक जाती, तो क्या आपको लगता है कि आज महिला या बालिका शिक्षा इतनी आसान हो पाती? निश्चित ही नहीं होती। तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि कुछ भी बड़ा कार्य यदि समाज में करना है तो हमको नैतिक बल बहुत आवश्यक होगा। जी
सर जी, आपसे मेरा एक अंतिम प्रश्न, अभी कोरोना की दो लहर चली गई है और तीसरी लहर आने की भी संभावनाएं निकाला नहीं जा सकता, इन परिस्थितियों में तीसरी लहर से निपटने के लिए आप जिलेवासियों को जनमंगल संस्थान की ओर से और आप अपने संगठनों की ओर से क्या संदेश देना चाहोगे?
देखिए, जैसा कि मुझे लगता है कि इस महामारी में हमारे जितनी भी पीढ़ियां इस समय है समाज में या दुनिया में, उन सबको एक बड़ा सीधा संदेश ये दिया है कि स्वास्थ्य सर्वोपरि। यदि आप स्वस्थ हैं तो आप जीवन में कुछ कर सकते हैं, और स्वस्थ रहने के लिए आपको दो तीन चीजें बहुत करनी है। यदि हम सीधे कोरोना की बात करें तो आपको अभी कल 15 अक्टूबर को विश्व मतलब अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस भी है दिनकर जी,
है
ना। तो इस ग्लोबल हैंडवॉश डे की भी यदि हम बात करें तो पूरे कोरोना काल में हमको ये सिखाया जाए कि हमको हाथों को बहुत अच्छे तरीके से कम 20 सेकेंड तक अच्छे से धोते हुए साफ करना है, क्योंकि हाथों में कहीं ना कहीं जर्म्स होते हैं, कहीं ना कहीं गंदगी होती है। तो हमको एक तो हाथों को साफ रखना है, दूसरा हमको मास्क का उपयोग करना है, क्योंकि हमारे लंग्स तक जो भी गंदगी जाती है वो हमारे मुंह और नाक के माध्यम से, मतलब हवा के माध्यम से ही कहीं ना कहीं जाती है। तो हमको एक तो मास्क का प्रयोग करना है, दूसरा ये जो मुझे देखने में आता है कि जिसका हम बहुत ही कम पालन करते हैं, पता नहीं क्यों, सामाजिक दूरी की जो बात है, तो यदि हमको कहीं भी ऐसी शंका आती कि कोई भी व्यक्ति सर्दी खांसी या जुकाम या बुखार का मरीज है, तो हमको थोड़ी सी सामाजिक दूरी तो बनानी चाहिए। और वैसे भी जब हम बाजार में जाते थे कि त्योहारों का समय चल रहा है, तो हमको एक सामाजिक दूरी बना के रखनी चाहिए। तीसरी और अंतिम बात मैं ये कहूंगा कि स्वस्थ रहना है तो आपको उचित आहार के साथ एक नियमित व्यायाम एक्सरसाइज भी आपको करनी पड़ेगी। यदि आप वो नहीं करेंगे तो आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। जी
बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, जो आपने छिंदवाड़ा वाणी के मंच पर उपस्थित होकर छिंदवाड़ा वासियों के लिए अपना महत्वपूर्ण संदेश दिया। छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी आपका हार्दिक अभिनंदन करता है।
जी जी।